ನಿಜ ಅಭಿಮಾನ ರಾಜಾಸ್ಮಿ ಸಿಂಧುಷು ಇತಿ ದುರ್ಮಂದ ಅಂಧ ಸೌವೀರರಾಜೋದ್ಯುಪದೇಶ ಆಸ್ತೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಭವಾನ್ ರುದ್ರ ನಿಜಾಭಿಮಾನೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಭವಾನ್ ರುದ್ರ ನಿಜಾಭಿಮಾನೋ ಸಿಂಧುಷುರ್ಮದಾಂಧ ಅಂಶೇ ದೀದಾರ್ ವಿಶಿಪಿಕಾ ಚ ಯಸ್ಯಾಂ ಸೌವೀರ ರಾಜೋಚ್ಯುಪದೇಶ ಆಸ್ತೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಭವಾನ್ ರುದ್ರ ನಿಜಾಭಿಮಾನೋ
ಮಾನೋ
ರಾಜಾಸ್ಮಿ ಸಿಂಧು
अंशे कंधा आदि ऊपर
ऊपर
दारवी
दारवी
लकड़ी की बनी हुई शिव का पालकी च तथा तस्याम जिस पर सौवीर राजा सौवीर का राजा इति इस प्रकार अपदेशः विख्यात आस्ते है यस्मिन् जिसमें भवान आप रूढः आसीन निज अभिमानः मिथ्या प्रतीत का भाव मिथ्या प्रतिष्ठा का भाव राजा अस्मि राजा हूँ सिंधुषु सिंधु राजा में सिंधु राज्य में इति इस प्रकार दुर्मदांधः अहंकार के वशीभूत मद से अंधे अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा आपके भौतिक संयोगों से विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतर बने हैं कुछ कारणवश ये पृथ्वी पर खिलते डुलते हैं और पालकी वाहक कहकर कहलाते हैं इसमें से वे स्वरूपांतर जो गति नहीं करते वे पत्थर जैसे स्थूल पदार्थ हैं प्रत्येक दशा में यह भौतिक देह पांव थकान पिंडली घुटना जांघ कमर गर्दन तथा सिर के रूप में पृथ्वी तथा पत्थर से बनी है इसके कंधे से ऊपर काट की पालकी रखी है और उसके भीतर सौवीर का राजा बैठा है राजा का शरीर पृथ्वी का अन्य रूपांतर मात्र है किंतु उस शरीर में शरीर के भीतर आप स्थिर हैं और अहंकार वश अपने को सौवीर राजा का राज्य का राजा मानते हैं तात्पर्य पालकी वाहक तथा पालकी के यात्री ने शरीरों का विश्लेषण करते हुए जड़ भरत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तविक प्राण शक्ति तो जीवात्मा है जीवात्मा भगवान विष्णु का ही अपर रूप है अतः इस संसार में समस्त चर तथा अचर वस्तुओं में मुख्य तत्व जो भगवान विष्णु है उसकी उपस्थिति के कारण ही प्रत्येक वस्तु कार्यशील है और कर्म तथा फल होते हैं जो यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान विष्णु है उसे तत्व ज्ञानी समझना चाहिए यद्यपि राजा रोगन को राजा होने का अहंकार था किंतु वह तत्व ज्ञानी नहीं था इसलिए वह कहारों को जिनमें स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत भी थे डांट रहा था जड़ भरत द्वारा राजा पर यह पहला आरोप था कि वह प्रत्येक वस्तु को पदार्थ मानकर अविद्या के कारण सुदी ब्राह्मण से बोलने का दुस्साहस कर रहा था। राजा रघुगण का तर्क था कि जीवात्मा तो शरीर के भीतर है, अतः जब शरीर थकता है तो उसके शरीर का जीवात्मा अवश्य थकता है। लेकिन अगले श्लोक में यह भली भांति समझाया गया है कि शरीर की थकान से जीवात्मा को कष्ट नहीं होता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आभूषणों से लड़े हुए बच्चे का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि बच्चे का शरीर अत्यंत सुकुमार होता है, किंतु ना तो उसे थकान का अनुभव होता है और ना उसके अभिभावक ही आभूषणों को उतारने के लिए व्यग्र होते हैं। जीवात्मा को शारीरिक सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये तो मानसिक कुटरचनाएं हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हर चीज का कारण ढूंढ निकालेगा। लौकिक व्यवहार में भौतिक संयोगों तथा कर्मचारों को तथा तथ्य कहा जा सकता है, किंतु जीवित शक्ति आत्मा को इनसे कोई सरोकार नहीं रहता। जो भौतिक दृष्टि में असंतुलित है वे शरीर की परवाह करते हैं और दरिद्र नारायण की पुष्टि करते हैं, किंतु यह सच नहीं है कि शरीर के दरिद्र होने से आत्मा या परमात्मा भी दरिद्र हो जाता है। ऐसा तो अज्ञानी ही कहता है। आत्मा तथा परमात्मा शारीरिक सुख दुख से सर्वथा पृथक है। ओम ज्ञातुमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपस्तामेवादिसदान्तिं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सर्व ललिता श्री चातांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देव प्रणमामि हरि तुभ्यं वांछा गर्भगुरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जयताम सर्वतोपूर्व मां मंदमते गतिमत् सर्वस्वपदां भोजो राधा मदन मोहन यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रवृतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगवदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सांगा ध्यानावस्थिततस्य तेन मनसः पश्यन्ति अहं योगिनो यस्यान्तं नमितसुरा सुगणा देवाय तस्मै ये पांचवा छठा श्लोक मिला हुआ है उसके पहले वाले श्लोक या पहले के पहले वाले श्लोक यानी तीसरे श्लोक में राजा रोहगण जड़ भरत से निवेदन करते हैं कि आपके जो वाक्यों से मैं बहुत विचलित हो गया हूं। I am very much confused. व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, जैसे अर्जुन भी इसी बात को कहा था, व्यामिश्रेण वाक्येन दो दो बातें कहते हैं, एक बार कहते हैं आप काम करो, एक बार कहते हैं आप बस ध्यान में स्थित रहो, कुछ कार्य मत करो। तो ऐसे बातों से कंफ्यूजन भगवान ने उत्पन्न किया था अर्जुन के मन में, उत्तर देते हुए जवाब देते हुए भी सिद्धांत का निरूपण करते हुए भी एक प्रकार का कंफ्यूजन उत्पन्न किया था अर्जुन के माइंड में। तब अर्जुन बताते स्पष्ट रूप में तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, फिर से स्पष्ट रूप में, फिर से सरल रूप में मुझे कहिए मुझे क्या करना है। तो उसी प्रकार का बात इधर हुआ, जैसे जड़ भरत ने पूरा पिछले अध्याय में इतना सुंदर प्रवचन दिया, आप ये हो शरीर और आत्मा का भेद, किस प्रकार शरीर के सुख दुख आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, अलग अलग प्रकार उन सारे तत्वों को इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया। वर्णन करने के बाद राजा रघुगण एकदम दंग हो गए, दंग होकर पूछते हैं कि अभी मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, जो बोल रहे हैं उसमें सत्य जरूर है, लेकिन अभी प्लीज रिपीट देम इन सिंपल वे सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड देम, आप मुझे फिर से उन्हीं बातों को सरल तरीके से बताइए, क्योंकि आप पहले जो बताया वो मुझे लग रहा है सत्य है लेकिन मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया, स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आया। एक शिष्य का एक बड़ा जो सुंदर एक गुण है, जब तक वो तत्व का स्पष्टीकरण नहीं होता तब तक गुरु का प्रवचन सुनना उनको बंद नहीं करना चाहिए। उनसे बार बार ये तत्व का निरूपण को अच्छी तरीके से समझने के लिए अलग अलग प्रकार प्रश्न पूछना चाहिए। और गुरु का भी एक कर्तव्य ये होता है कि जब तक वो शिष्य पूर्ण तरीके से वो प्रश्नों का संतुष्ट नहीं हो तब तक वो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जैसे राजा रघुगण ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा, फिर अभी इस श्लोक में जड़ भरत फिर से उन्होंने पहले जो कहा था उन्हीं बातों को फिर से रिपीट कर रहे और सरल रूप में और स्पष्ट रूप में इन बातों को कह रहे। एक प्रकार एक साहित्य का शैली होता है, कोई भी बात अगर बहुत सारे बातें अगर पूरा शास्त्र में पूरा प्रवचन में बताया जाता है, बताने के बाद अंत में उसको उपसंहार किया जाता है, जो भी कहा गया संक्षिप्त में फिर से स्पष्ट रूप में मैंने ये कहा करके फिर से बताना, ये स्वभाव होता है एक साहित्य का। वो साहित्य का स्वभाव भी लीजिए, गुरु शिष्य का संबंध के बीच में वो जो रस भी लीजिए, फिर भी कोई भी हो, इधर राजा रघुगण को ब्राह्मण ये इधर ब्राह्मण वाचा मतलब अपने जड़ भरत फिर से जो पहले कहे गए बातों को फिर से समझा रहे। राजा रघुगण को पिछली बार उन्होंने प्रवचन दिया था उनमें से सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा था, क्या था वो, शरीर के जो सुख और दुख है उसके साथ आत्मा को उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, अगर शरीर थक जाता है तो आत्मा थकता नहीं। क्योंकि राजा रघुगण ने इस प्रकार आरोप डाला था जड़ भरत को कि आप थक गए हो क्या, आप थक गए हो तो जैसे इस शब्द के ऊपर आधारित होके जड़ भरत बताते हैं कि हे राजा मैं नहीं थकता हूं, हो सकता है मेरा शरीर थक गया हो। तो शरीर और आत्मा का भेद का सिद्धांत लेते हुए बहुत सुंदर प्रवचन उन्होंने बताया था खाली एक सेंटेंस के ऊपर आधारित होके, क्या आप थक गए हो क्या। तो उस बात को लेकर राजा रघुगण फिर से बताने लगे जड़ भरत राजा रघुगण को, आप जानते हो जब मुझे आप बोल रहे हो तो आप किसको संबोधित कर रहे हो, शरीर को संबोधित कर रहे हो आत्मा को संबोधित कर रहे हो। तो उसी बात को इधर और स्पष्ट रूप में इन दो श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है। ये दो श्लोकों का सार भगवान भगवत गीता में एक शब्द में एक लाइन में बताते हैं, एक श्लोक की एक लाइन में, वो है गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक है इस अध्याय का, तत्त्वविद्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भले ही राजा बड़े प्रसिद्ध राजा था, वो पालकी में बैठा हुआ था, लेकिन वो तत्वविद नहीं था, तत्ववादी नहीं था, वो तत्व के बारे में जानता नहीं था। तो इसलिए वो तत्ववादी नहीं था या तत्व को जानता नहीं था, इसके वजह से ये सोच रहा था कि मैं राजा हूं और ऐसे पालकी वाले हैं और मैं एक पालकी में बैठा हूं और मैं जा रहा हूं एक जगह से दूसरी जगह, ये सब लोग जो है मेरे नौकर है और मैं जैसा कहता हूं उनको ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार ये राजा अज्ञान में था। क्यों था? क्योंकि वो तत्व को सीधा था जगन्नाथ मंदिर, ये तत्व को ये नहीं चाहता था। तो तत्वित्तु असलियत में जो तत्व को जानता है, वन नोज द ट्रूथ, तत्वित्तु महाबाहो अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को बताते हैं हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो तत्वित्त होता है, तत्व को जो जानता है, वो क्या जानता है? तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग, गुण कर्म विभाग जानता है कि ये जितने भी कर्म है इस संसार में हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा प्रेरित होकर हो रहा है? गुणों के द्वारा प्रेरित हो रहा है। नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम्, ये कोई और कार्य नहीं कर रहा है, केवल तीन गुण कार्य कर रहे हैं, नहीं क्षण जाति तिष्ठते कर्म कार्यति आवश्यक कर्म सर्व कर्म प्रकृति गुण ही। तो भगवान भगवद गीता में अलग अलग श्लोकों में इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि जो भी कार्यकलाप जो भी हो रहा है गुण कर्म गुणों के द्वारा प्रेरित होकर हो रहा है, और ये कार्य भले ही गुणों के द्वारा प्रेरित हो रहा है, और किस और क्या चीज कार्य कर रहे हैं या किसके ऊपर कार्यान्वित हो रहा है, ये सब चीजें वो भी गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुणा गुणेश वर्तन्ते, इस बात को इधर स्पष्टीकरण हो रहा है। तो सरल रूप में इधर इस दो श्लोकों में ब्राह्मण जड भरत राजा रघुवन को समझाते हैं, हे रघुवन, इस संसार में जो भी वस्तुएं देखते हो वो दो प्रकार के हैं, एक है चर दूसरा है अचर। अभी इस प्रसंग में आप एक पालकी में बैठे हो और पालकी को उठा के लेके जाने वाले कुछ लोग हैं। ये पालकी को जो उठा के लेके जाने वाले जो लोग हैं वो कौन है? वो भी ये पृथ्वी से बना हुआ या अलग अलग प्रकार की ये तीन गुणों के मिश्रण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि they are the permutation and combinations, the self-realized Brahmana Jada Bharat said, among the various material combinations and permutations, there are various forms and earthly transformations. ये जो तीन गुण सबसे पहले अपने आप में परिणित होते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार के रूप में। जब केवल ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को अगर संग्रह किया जाए, तीन गुणों का परिवर्तन केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश किया जाए, तब ये बना ये पालकी। जब ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के साथ साथ ये मन बुद्धि अहंकार भी मिल गया तो वो बन गए कौन? ये पालकी को उठाने वाले। तो ये राजा तुम ये सोच रहे हो कि मैं इन लोगों से अलग हूं, अस्तित्व में तुम भी कौन हो? तुम भी तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से तो बना हो, मन बुद्धि अहंकार से मिश्रण है। तो इधर एक प्रकार देखा जाए ये जो पालकी के वाहक और ये पालकी और आप, इनमें से कोई अंतर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभी केवल तीन गुणों का मिश्रण है, गुणा गुणेश वर्तन्ते। आप ये रजोगुण के द्वारा प्रेरित होगे, ये सोच रहे हो कि मैं इन लोगों का मालिक हूं और ये सब पालकी बालक मेरे नौकर है और ये पालकी जो है जड़ पदार्थ मेरा भोग्य वस्तु है। तो ये स्थिति में आपका मूर्खता है, अहंकार है। This is your ignorance. तो इस बात को स्पष्ट रूप में संक्षिप्त में ये कह रहे हैं। तो हम थोड़ा सा एक एक कुछ श्लोक का, इस श्लोक के कुछ शब्दों के ऊपर हम जरा सा विचार करते हैं। यह बताया है कि अयम जनहा नाम चलम पृथिव्याम यह पार्थिव्यः, पृथिव्याम चलहा पृथिव्याम, ये पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं। अयम जनहा, अयम जना मतलब ये पृथ्वी पे चलने वाले लोग, ये कौन है लोग? पालकी के वाहक। तो बोला गया है ये कौन है? पार्थिव्यः कस्य हेतु, बोलते कि पार्थिव्यः ये पृथ्वी के परिवर्तन है, यानी ये पृथ्वी में हम देखते हैं कि सब जल जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, सब कुछ पृथ्वी के अंतर्गत है। तो ये हमारा जो शरीर बना है वो भी पृथ्वी का परिवर्तन है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो पांचवा श्लोक में ये जो शब्द है क्या है? पार्थिव पार्थिव्याम पार्थिवः, जैसे बहुत दोनों एक ही शब्द है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर सा इन दोनों का जो एप्लीकेशन है वो अलग हो जाता है। वो राधा कृष्ण समझा रहे थे, वो विभक्तियों का समझा रहे थे। तो विभक्तियों के अनुसार देखा जाए एक शब्द है वो है पार्थिव्याम। पार्थिव्याम मतलब पृथ्वी के ऊपर चलने वाले पार्थिव्याम, और दूसरा शब्द है पार्थिव्यः यानी पृथ्वी से। ये जो पृथ्वी के ऊपर चलने वाले जो लोग हैं वो कौन है? वो पृथ्वी से उत्पन्न हुए, तो ये इसका मतलब है। तो पार्थिव्याम पृथ्वीयः, तो आप क्या सोच रहे हो? मैं पार्थिव, मैं सोच रहा हूं इसका राजा हूं। तो ये तीन शब्द ये पांचवा श्लोक में आया। एक है पृथ्वीयां पार्थिव पार्थिव, ये तीनों का मतलब ये है। एक सूचित करता है कि ये जो पृथ्वी के जो वाहक है या पंचवाल्की के वाहक है वो कौन है? वो पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं। और एक पृथ्वी के ऊपर चलने वाले कौन है? ये पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए। और ये राजा क्या सोच रहा है? मैं इस पृथ्वी से उत्पन्न हुआ और पृथ्वी में चलने वाले लोगों का मैं राजा हूं। तो ये पांचवा श्लोक में ये पृथ्वी शब्द तीन बार इस्तेमाल हुआ है, तीन कॉन्टेक्स्ट में। तो ये शब्दों के द्वारा राजा को जड़ भरत समझा रहे हैं। हे राजा, तुम ये सोच रहे हो कि पृथ्वी से बना हुआ तुम और पृथ्वी से बना हुआ वो लोग और पृथ्वी के ऊपर चलने वाले और पृथ्वी से बना हुआ वो पालकी, वो सब का मैं मालिक हूं और मैं इसका राजा हूं। अस्तित्व में आप लोगों में कोई अंतर है ही नहीं। इस बात को बहुत टेक्निकली समझा रहे, और अस्तित्व में इन सब बातों को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर मन को केंद्रित किया जाए, बुद्धि को केंद्रित किया जाए, उनमें से थोड़ा सा रस मिलता है मिलता है। तो हम इस बात को बस एक घंटे से पढ़ रहे थे कि किस प्रकार कैसे अच्छी तरीके से समझाया गया है कि There is no difference between the king and the subjects. लेकिन ये राजा अपने आप को मैं राजा हूं, जैसे इस श्लोक में आखिरी में आया राजा अस्मि सिंधु स्विति दुर्मतांगः। ये सारा श्लोक यही सारे आखिरी में जो है राजा अस्मि, तुम ये सोच रहे हो कि मैं राजा हूं, मैं राजा अस्मि तो मैं राजा हूं करके सोच रहे हो। सिंधुषु सिंधु देश का मैं राजा हूं करके सोच रहे हो करके वो दुर्मता अंधः, दुर्मति अंधः। आपका जो ये क्यों सोच रहे? क्योंकि आपका मति जो है दुष्ट हो चुका है, दुर्मति। और इतना ही दुर्मति नहीं, वो मति जो है अंधकार में, एकदम ऐसा शब्द इस्तेमाल किया दुर्मता अंधः। दुर्मति तो अलग बात है, लेकिन दुर्मति के साथ साथ अंधः यानी अंधकार में आपका मति, आपका इतना अज्ञान में होकर के इनको संबोधित कर रहे। तो ये बात जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है अर्जुन को सबसे पहला, हे अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। इसी बात को इस भागवत में इस प्रसंग में एक कहानी के रूप में बताया जा रहा है, एक प्रसंग के रूप में बताया जा रहा है। तो यही होता है शैली ये उपनिषदों का या स्मृतियों का श्रुतियों का। भगवत गीता भले ही महाभारत का एक अंग है क्योंकि उसको उपनिषद का सार के रूप में माना गया है, और उपनिषद जो है स्मृति शास्त्र के अंतर्गत आता है, श्रुति शास्त्र के अंतर्गत आता है। एक प्रकार बोला जाए भगवत गीता क्या है? सारे श्रुति शास्त्र का सार है, उपनिषदों का सार है। और भागवतम क्या है? सारे स्मृति का सार है। स्मृति में और श्रुति में यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है? श्रुति में खाली फिलॉसफी दिया जाता है, क्या दिया जाता है? आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा दिया जाता है। लेकिन उस बात को और अच्छी तरीके समझने के लिए स्मृति शास्त्र में, खास करके भागवतम में और पुराणों में, एक उदाहरणों के द्वारा, नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के उदाहरणों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, इतिहासों के द्वारा ये समझाया जाता है कि जो स्मृतियों में लिखा है, श्रुतियों में लिखा है तुम ये शरीर नहीं आत्मा, उसको इधर स्पष्टीकरण एक उदाहरण के द्वारा किया जाता है, एक व्यक्ति के जीवनी के द्वारा किया जाता है। जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान बताते हैं अंत काले च मामेव स्मरण, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है अंत काल में, तो क्या होगा? वो मेरे पास आए। लेकिन उसी बात को और अच्छी तरीके से श्रीमद् भागवत में विष्णु देव का जो घटना है उससे हमको प्रेरित होता है। एवं वहां पर स्वर्म भाव चरित्यंते कलेवरम, भगवान बताते हैं जिस जिस भावना से आपका शरीर त्याग करते हो उस भावना को प्राप्त करते हो, और उस बात को भागवत में जड़ भरत का भरत भाव से खाने से हमको स्पष्टीकरण होता है। तो वैसे ही भगवान ने भगवत में क्या कहा था, हे अर्जुन तुम ये शरीर है, तुम आत्मा हो, ये तो खाली एक लाइन है, एक फिलॉसफी, लेकिन उसको और एक व्यवहारिक रूप में, एक प्रसंग, व्यक्तिगत प्रसंग में ये भागवत में इस सेक्शन में अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो ये दुर्मतांध हमारा सारा दुखों का कारण यही है, ये शब्द है, क्या है वो, दुर्मति। ये दुर्मति मतलब क्या है, हमारा बुद्धि जो देह और आत्मा में लगा है, देहात्म बुद्धि बोला जाता है। ये देहात्म बुद्धि मतलब कि मैं यही देह हूं और आत्मा और देह में कोई अंतर नहीं है, ये सोचना देहात्म बुद्धि है, इसी को दुर्मत अंधा बोला। दुर्बुद्धि मतलब और कुछ नहीं है, दुष्ट बुद्धि मतलब ये नहीं है, दुष्ट बुद्धि मतलब ये सोचना कि मैं और ही आत्मा। ये देहात्म बुद्धि का दो मतलब होता है, एक है देह को आत्मा सोचना, दूसरा है आत्मा को देह करके सोचना। देह को आत्मा सोचना मतलब क्या है, ये जड़ भौतिकवाद है, वो सोचते हैं कि यही देह है, यही सब कुछ है, इसको सुख दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसको दुख दो तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन देखा जाता है कि जब लोग इस देह को सुख देने के लिए जाते हैं, कितना सुख देने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दुख को अनुभव करते हैं, और कभी कभी कुछ तो दुख को अनुभव करते हुए सोचते मैं सुखी हूं। तो ये देहात्म बुद्धि उनका कोई कुछ मतलब ही नहीं, वो सोचते हैं कि ये जड़ भौतिक शरीर यही आत्मा है, यही सब कुछ है। ये देहात्म बुद्धि का एक मतलब है। दूसरा मतलब है देहात्म बुद्धि का ये सोचना कि आत्मा देह है, यानी इधर आत्मा का मतलब है मन, यानी सूक्ष्म शरीर। ये सोचते हैं कि सूक्ष्म शरीर ही देह है, तो ये सूक्ष्म शरीर को मैं आनंद प्रदान करूंगा, ये और खतरनाक लोग है। एक प्रकार के जड़ भौतिकवादी, दूसरे प्रकार के जो लोग है वो सूक्ष्म भौतिकवादी है। ये जड़ भौतिकवादी सोचते हैं कि बस इसी यही संसार है, यही देह है, यही मैं देह हूं, तो बस इस देह को आनंद दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये है संसार, ये देह हमारा दुख का कारण है, लेकिन सुख का कारण क्या है, वो है हमारी सूक्ष्म शरीर यानी मन। तो इसलिए आप यज्ञ करो और आप कर्मकांड का विधियों को अपनाओ और आपका जो सुख है इधर नहीं है, ये पृथ्वी पे नहीं है, कहां है, स्वर्ग में, स्वर्ग लोगों में विशाल हो, आप उधर जाके सुख भोग करो। इधर इतना सूक्ष्म विचार है लोगों का कि वो कहते हैं कि जब भगवान भगवत भविता में बताते हैं ये संसार दुखालय अशाश्वत है, वो बोलते हैं कि सही बात है, संसार दुखालय अशाश्वत है, ऐसे ही अशाश्वत है, लेकिन अशाश्वतता वस्तु में है, लेकिन वो वस्तु के गुण में नहीं है। जैसे मान लीजिए एक स्त्री है, क्योंकि सारा संसार स्त्री को भोग करना चाहता है, उनसे आनंद लेना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि सही बात है, स्त्री से जो उत्पन्न हुआ जो आनंद है वो क्षणिक है, क्योंकि वो स्त्री का शरीर बुढ़ापा हो जाता है, उसके द्वारा उनसे कुछ और आनंद तो है नहीं, तो इसलिए ये जो भौतिक संसार वो अशाश्वत है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, खास करके स्त्री से आनंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, वो जो गुण है वो तो शाश्वत है, भले ही ये स्त्री बूढ़ी हो जाएगी लेकिन और जवानी जो है कोई और स्त्री में चली जाएगी, ये जवानी नामक जो गुण है वो शाश्वत है, भले ही वो स्त्री बुढ़ापा आ गया उनको लेकिन वो गुण किसी और में चला गया। इसलिए बोलते हैं कि हम अपने सूक्ष्म इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार, उनको आनंद प्राप्त करेंगे और उस जगह जाएंगे जहां इस प्रकार की हमको गुण लोगों में प्रस्तुत हो, तो इसलिए वो लोग स्वर्ग में जाने के प्रयास करते हैं। तो ये दुर्मत अंधः, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये देहात्म बुद्धि की ओर इंगित करते हुए ये राजा रघुगण को ये जड़ मर्द ये हमको शिक्षा दे रहे सभी लोगों को कि सबसे पहला आध्यात्मिक जीवन का बुनियाद यही है कि हम इसके ऊपर बार बार विचार करें कि मैं ये शरीर नहीं हूं और ये शारीरिक सुख दुख और ये शारीरिक चीजों के साथ मेरा कुछ देना देना, केवल शरीर के साथ नहीं बल्कि ये मन बुद्धि अहंकार के साथ संबंधित चीजों के साथ भी मेरा कुछ लेना देना नहीं। There is nothing related to this thing. कुछ लोग हमसे जब इन प्रकार की बातों की चर्चा करते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम में, पर्सनली कुछ भक्तों आके पूछते हैं, कभी खास करके जब बीमार होते हैं तब आके पूछते हैं कि तो ये बीमार हूं, मुझे दुख हो रहा है, उसका अनुभूति हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरा भक्ति में बाधा हो रहा है, तो मैं कैसे इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाऊं। तो इसके लिए एक बहुत सरल और बहुत सुगम रास्ता है, हमको ये ध्यान में रहना चाहिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इस श्लोक से लेना चाहिए। जिस प्रकार बत्तीरसामन सिंधु रूप शिक्षा में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब भक्तिलता बीज हृदय में डाला जाता है, वो भक्तिलता बीज जो है वो लता में परिणित होते, बीज लता में परिणित होते उगते उगते जाता है। उधर श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ये भक्तिलता बीज को खाली श्रवण और कीर्तन नामक जल के द्वारा सिंचन किया जाता है, अपने आप उगता है। लेकिन इस संसार में हम लता को देखते हैं, लताओं को उगने के लिए उनको एक सपोर्ट चाहिए, एक डंडा चाहिए, तब वो लता जो है वो ऊपर बढ़ता है और सुंदर सा एक लता के रूप में बनने लगता है। लेकिन ये भक्ति लता बीज को ऊपर उगाने के लिए उसको कोई सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो उधर व्याख्या किया जाता है कि ये भक्ति नामक जो लता का बीज को या उस लता को ऊपर गोलोक वृंदावन तक लेके उसको कृष्ण प्रेम में परिणित होने के लिए कोई भौतिक सहारा की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में भक्ति में उन्नत होने के लिए हमारा बहुत कोई भी भौतिक परिस्थिति कोई सहयोग नहीं देता। ये सोचना कि अभी मैं घर में हूं, ये घर बराबर नहीं मेरे भक्ति के लिए, तो मैं दूसरे घर में जाऊंगा उधर मेरा अच्छा भक्ति होगा, नहीं, ये जो ये प्रकार का वहां ये जगह अच्छा नहीं है, वो जगह अच्छा नहीं है, तो ये जगह मेरा भक्ति अच्छा होगा। तो ये सोच कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये भौतिक माहौल मेरा भक्ति के लिए कुछ सहयोग देगा ना, ये दगाकर गलत बात है। तो अगर ऐसा बात को अगर समझेंगे टू प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस नो मेटीरियल थिंग्स कैन इम्पीड, कोई भी भौतिक अवस्था में हर अवस्था में व्यक्ति भक्ति कर सकता है। अगर ये व्यक्ति इसके ऊपर ध्यान नहीं दे तो सोचेगा कि अपनी भौतिक परिस्थितियों को मैं बदली करूंगा ताकि मैं अच्छा भक्ति कर सकता हूँ, मैं भौतिक परिस्थितियों को बदली करूंगा ताकि मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, नहीं जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं भक्ति नहीं करूंगा, ये सब प्राप्त होने के बाद मैं भक्ति करूंगा, इस प्रकार कोई सोचता है वो सबसे बड़ा मोह है। जब श्री प्रभुपाद जी बंसीनाथ सागर के पास गए थे तब उन्होंने यही प्रस्ताव रखा था, नहीं सबसे पहला हमको स्वतंत्रता मिलना चाहिए उसके बाद में हम प्रचार करेंगे, हम बंसीनाथ सागर ने यही बात बताया। ये प्रचार का आंदोलन या आध्यात्मिक जो आंदोलन है ये भौतिक अवस्था के ऊपर निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र हो अस्वतंत्र हो, सुख हो सुखी है दुखी है, इसके ऊपर कोई निर्भर ही नहीं करता। इट डजंट डिपेंड प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस, आत्म उन्नति जो है ये सुख और दुख के ऊपर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस आत्मा को इस भौतिक शरीर का सुख और दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारे वरिष्ठ भक्त इवन प्रभुपाद जी भी उनको देखेंगे 8 दिन से वो कुछ भी एक बूंद पानी तक नहीं पिए थे, उनके चेहरे में कैसे था? आप सबको ये फाइनल लेसन देखना चाहिए। अगर इस बात को अगर सच में हमको समझना है इस श्लोक को, ये जो आज के जो श्लोक है यानी शरीर के साथ सुख दुखों का हमारा कुछ लेना देना नहीं है, अगर सच में इसको अपने जीवन में उतारा हुआ अगर किसी को देखना है वो है प्रभुपाद जी का जो वीडियो है फाइनल लेसन, देखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आखिरी समय तक वो माइक्रोफोन है और भागवतम का उसी प्रकार अनुवाद कर रहे और उतना ही स्पष्टता से उतना ही तरीके उतना ही कुशलता से श्री प्रभुपाद जी भागवत का अनुवाद, कोई चेहरे में जरा सा भी हलचल नहीं है, शरीर कितना अवस्था खाली खाली बोन्स दिखाई पड़ते थे, नथिंग एल्स। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला हमको ये ध्यान रखना होगा कि आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड, ये सुख और दुख मान और सम्मान इसके साथ मेरा कुछ लेना ही देना नहीं है, खास करके मेरे भक्ति के जीवन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है। जैसे जैसे ये बात को हम बार बार मनन करते रहेंगे ये साक्षात्कार अपने आप आएगा। ये सारे बातें कभी कभी ऐसा लगता है बहुत थियोरेटिकल, थियोरेटिकल मतलब खाली लिखने के लिए है हमारे लिए नहीं, ऐसा लगता है नहीं, इन सारे बातों को मनन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मनन नहीं किया जाता है तब तक साक्षात्कार नहीं होता है। श्री प्रभुपाद जी 13वें अध्याय के आखिरी श्लोक के तात्पर्य में इस बात को लिखते हैं कि कॉन्टेम्पलेशन लीड्स टू रियलाइजेशन। कॉन्टेम्पलेशन मतलब मनन करना। ये और टेक्निकली योग शास्त्र में इसको निधि ध्यास बोला जाता है। निधि ध्यास स्वाद, निधि ध्यास मतलब जो ध्यान किया हुआ चीज को फिर से ध्यान करना। कैसे ध्यान करना? कोई और तरीके से। टू कॉन्टेम्पलेट ऑन वन थिंग इन डिफरेंट वेज इज कॉल्ड निधि ध्यास। एक ही तत्व को, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण से बार बार मनन करना। ये मनन करने से क्या होगा? बार बार स्मरण करने से क्या होगा? एक दिन वो साक्षात्कार के रूप में परिणित होगा। तो इसलिए सारे भक्तों को ये बहिरंगिक जो कार्यकलाप, जैसे एक बार राधा कृष्ण अपने प्रवचन में इस बात को स्पष्ट रूप में बता रहे थे, बहिरंगिक कार्यकलाप तो व्यक्ति कर ही रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है, सब कुछ हो रहा है एक्सटर्नली। लेकिन ये अंतःकरण का जो बार बार जो मनन करना, ये कॉन्स्टेंट कॉन्टेम्पलेशन अंदर होना चाहिए, चर्निंग ऑफ द माइंड। ये मन को एक प्रकार का एक उसको क्या बोलते हैं, चर्निंग रॉड को, मंथन करने वाला जो डंडा है, टेक्निकली कुछ नाम है वो डंडा है ना, वो यशोदा माई डंडा करती थी, मथनी। एक मथनी जैसा होना चाहिए। तो ये मन को एक मथनी के जैसा अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन शास्त्रों को मंथन करते हुए, उससे क्या होगा? एक मक्खन नामक रियलाइजेशन उत्पन्न होगा। इट कम्स, रियलाइजेशन कम्स। नहीं तो क्या होगा, ऐसा लगता है ये बहुत ड्राई फिलॉसफी है, ये क्या है, कभी वही चीज को पृथ्वी बन गया, ये बन गया, ये बन गया। लेकिन उनके ऊपर मंथन किया जाएगा तो उसके अंदर से रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली हमको उत्पन्न होगा। इसलिए सारे भक्तों से निवेदन है, खास करके भगवद्गीता के और इन विभाग जहाँ शरीर आत्मा का भेद बताया जाता है, और नान्य गुणे प्रकृता रविता दृष्टान पश्यति, ये गुणों के अलावा और कुछ कार्य नहीं हो रहा है, खास करके भागवतम के इस प्रसंग में, जड़ भरत के प्रसंग में इन सब तत्वों का निरूपण हो रहा है, उन सब के ऊपर हमको केवल एक पढ़ने के जैसा नहीं, बल्कि उन एक एक शब्द के ऊपर हमको इन मन को एक मंथन के वचने के रूप में इस्तेमाल करते हुए, इनसे सार को निकालते हुए उनको साक्षात्कार प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। We should always understand that ये भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का सुख और दुख से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा लेना देना किसी के साथ है? केवल कृष्ण और कृष्ण भक्ति और गुरु के साथ है। I have got only to do with three things: Krishna, Krishna's devotee, and devotion. क्योंकि ये तीन मात्र, they are eternal. शाश्वत केवल तीन वस्तु है, कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण, और बाकी सब के साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। I want nothing to do with this. ये बहुत महत्वपूर्ण, ये बुनियाद है आध्यात्मिक शिक्षा का, बुनियाद है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो ये एक बड़ा धरातल है। अगर इस धरातल के ऊपर अगर कोई खड़ा नहीं रहता है, हमेशा उनका आध्यात्मिक जीवन जो है वो खतरे में है। इट इज ऑलवेज इन वेरी बिग डेंजर। जो लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए भगवान भगवद्गीता में शुरुआत में आत्मा शरीर के बीच में क्यों बताया? शुरुआत में कोई दीवार नहीं बनाता बिल्डिंग के लिए, शुरुआत में क्या बनाया जाता है? बुनियाद बनाया जाता है। सबसे पहला क्या बनाया जाता है? नींव बनाया जाता है, उसके ऊपर घर बनाया जाता है। तो अगर वो नींव या बुनियाद बराबर नहीं है तो आपका घर भी बराबर नहीं होगा। तो वैसे ही अपने भक्ति नामक जो घर का, अगर वो नींव बराबर नहीं है तो क्या होगा? वो भक्ति हमेशा हिलता रहेगा, कभी बराबर कभी। जो लोग इस तत्व में स्थित है तो उनका कितना भी सुंदर सा भक्ति किया जाए हमेशा वो स्ट्रांग रहता, अभी कभी उसका गिरता नहीं। तो इसलिए ये श्लोक का भगवद्गीता के साथ कनेक्शन वाला श्लोक यही है, गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। न सज्जते मीन्स ही इज नॉट डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये संसार में जो भी है वो सब त्रिगुणात्मक है, और ये संसार के जितने भी चलायमान वस्तु है वो भी त्रिगुणात्मक है, और मेरा शरीर भी और मैं भी ये त्रिगुणात्मक वस्तु से बना हूँ, और उनके अंदर मैं आत्मा जो अलग से वस्तु स्थित हूँ, तो इन सब चीजों को जो जानता है वो ये जो शब्द है वो है दुर्मतांधा। दुर्मतांधा इससे मुक्त हो सकता है, देहात्म बुद्धि से मुक्त हो सकता है, नहीं तो ये राजा रघुवर के रूप में, राजा अस्मि सिंधु स्वीति, मैं ये सिंधु प्रदेश का राजा हूं करके जिस प्रकार मूर्खता से सोच रहा है, अस्तित्व में बोला जाए कि ये जो चलने वाले वो पाल की वाहक है वो और राजा में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों पृथ्वी का एक ट्रांसफॉर्मेशन, पृथ्वी से ही बना है, और ये पालकी में भी कोई अंतर नहीं क्योंकि वो भी पृथ्वी से बना है, एक है स्थूल एक है सूक्ष्म, अलग बात है लेकिन फिर भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये तत्व ज्ञान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सारे भक्तों के लिए, नहीं तो उनका भक्ति का जीवन जो है हमेशा वो हिलडुलता रहेगा। तो यही हमको शिक्षा इस प्रसंग से प्राप्त किया जाता है।
सेवा है, भौतिक कार्यकलाप है,
उसमें बचने के लिए हमको नाना प्रकार का बहाना जरूर बना सकते हैं, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये जड़ पर दिखा रहा है किस प्रकार हमको जब भौतिक तरीके से नाना प्रकार की उलझने आ रहे हैं या फंसने का मौका आ रहा है, बस ऐसा जब भगवान की सेवा आता है तो और आतुरता से करना चाहिए। वन शुड डू मोर एंड मोर बिकॉज़ अल्टीमेटली इट इज अ सर्विस विच डेवलप्स लव। भगवान के लिए प्रेम जो है वो कैसे उत्पन्न होता है? माँ बच्चे से इतना प्रेम क्यों करती है? क्योंकि 9 महीना कंटिन्यूअसली गर्भ में धारण करके सेवा किया तभी उत्पन्न हुआ ना। जितना प्रेम करता है व्यक्ति से उतना ज्यादा सेवा करता है, जितना ज्यादा प्रेम सेवा करता है उतना ज्यादा और प्रेम उत्पन्न होता है, दोनों परस्पर पोषण करने वाली चीज है। अगर कोई व्यक्ति सेवा को त्याग करता है इसका मतलब क्या है? उसको प्रेम को भी त्याग करता है। ऐसा नहीं हो सकता है माँ बच्चे माँ के पास आके बोलेगी ओ मम्मी भूख लगा है, मम्मी बोलते हो मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। अरे प्रेम करता है तो जाके पका के खिलाओ, ये प्रेम होता है। So love and service both complement each other. कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं मुझे बहुत सारा सेवा हो जाता है मैं तो मुझे तो श्रवण कीर्तन करना है भजन करना है, तो ये भजन कीर्तन क्या सेवा नहीं है? दिस आल्सो सर्विस। अगर भागवतम को एक सेवा के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता है तो पांडित्य है और वो ही भागवतम नाश का कारण बनता है व्यक्ति का। जिस भागवतम को अध्ययन कर रहा है वही भागवतम को अगर सेवा की भावना से, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या है? नित्यम भागवत सेवया। एक बार पुनः सुनो इस बात को, बता रहे मुझे अभी भी याद है क्योंकि वो टाइम में शुरुआत में 6-7-8 साल पहले हमको एक बहुत ये जोश था भागवतम पूरा ये करेंगे। 2 दिन पहले उनसे ऐसा बात किया था उस तब वो चुप रहे क्योंकि उतना संबंध नहीं था, लेकिन क्लास में उस बात को बताया तुरंत हमको समझ में आया कि हमको अपनी पांडित्य के द्वारा ये भागवतम को ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा को भागवतम हो भगवत जो भी हो, इस प्रकार अगर सोचेंगे सेवा की भावना चली जाएगी तो वही जो है हमारा नाश का कारण होता है। तो इसलिए नित्यम भागवत सेवा है। और ये भागवत कक्षा में बैठते हैं जो बोल रहे हैं वो क्या है? जो वक्ता है अस्तित्व में वो भागवत सेवा कर रहा है, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु की विधि के अनुसार 64 अंगों में भक्ति के अंगों में एक अंग है भगवान के सामने भगवान का गुणगान करना, विग्रह के सामने आके भगवान का गुणगान किया जाता है। दिस इज 164 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। और जो व्यक्ति कर रहा है वो ये कार्य कर रहा है, लेकिन जब ये कार्य कर रहा है तो सबको साथ में लेके क्यों ना किया जाए? दिस इज द भाव भागवतम क्लास के पीछे। अगर उस क्लास को देना है तो आपको क्या करना होगा? भागवतम का अध्ययन करना होगा। तो आपकी सेवा यानी श्रवण करने का हो कीर्तन करने का सेवा और अच्छी तरह से करने के लिए आप बाहर अपने आश्रम में या घर में कहीं जाके अध्ययन करते हुए अपना ये सेवा के लिए तैयारी कर रहे थे। तो ये बहुत विचित्र कॉन्सेप्ट है, जब लोग सोचते हैं ये दोनों अलग अलग है, भजन अलग है सेवा अलग है, तो उनका मतलब है उनको सिद्धांत मालूम नहीं है। उनको अभी भी भागवतम पढ़ना है, बराबर पढ़ना है।
आपको प्रश्न किया वो एक बीच वाला वर्ग है
उनके लिए क्या
है? या उनके लिए तो नहीं, उनके लिए जो शरीर है उस शरीर को जैसे शास्त्र में बताया गया कि शरीर एक नौका है नौका ले जाने के लिए, तो उन नौका में हॉर्न नहीं गिरना चाहिए या वो नौका ठीक रख करके, तो नहीं तो प्रभावित करेगा। जैसे जैसे आप दूसरा एक बात बोले वस्तु, तो वस्तु का प्रभाव नहीं होता, लेकिन प्रभाव होता है। कब तक होता है? तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग जप कर रहे हैं, लेकिन जब अगर कहीं शराब खाने में जाकर के हम जब बैठ जाए जब करने के लिए, कितना भी अच्छी प्रकार से हम जब करेंगे हमारा मन नहीं लगेगा। हाँ वहीं पर भरत महाराज को जब करने भी आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति ये है कि जो ये बीच वाले व्यक्ति है जैसे साधक लोग हैं, तो साधक लोग के लिए बहुत ही आवश्यक जरूरी है कि वो अपने शरीर का भी उसी प्रकार देखभाल करें और जिस प्रकार अपने मन का भी करे उसी प्रकार शरीर का भी देखभाल करे।
इसमें विवादास्पद चीज कही नहीं, सिर्फ शरीर की देखभाल नहीं करने के लिए हमने बोल रहे कि स्वाभाविक ही है शरीर बुढ़ापा आएगा। कोई बोलेगा मैं बहुत जवान हूं तो बुढ़ा होने की भक्ति करेगा, कोई बुढ़ा बोलेगा अभी बस बुढ़ापा आ गया है अभी क्या होगा, स्वाभाविक आ ही जाता है। आपके पास मंदिर है और बाजू में शराबदाना है, हम ये नहीं बोल रहे जाके शराबदाना में जाके जपा करो। मान लो कि ऐसा अवस्था है कहीं कहीं गए, जैसे मान लीजिए मैं अपने खुद की अवस्था बताता हूँ, जब हम नौकरी कर रहे थे वो टाइम में जहाज में, मैं अपने जो शिक्षा गुरु है उनको कभी ये नहीं बताया कि जहाज में कुछ ये नहीं है ऐसा होता है ऐसा होता है इसलिए मेरा जप नहीं होता, क्योंकि वो परिस्थिति दिया है भगवान ने तो समय में हमने किया है जो जो हो सकता है उतना किया है। That is the point. Complain नहीं। जो भगवान अपने पिछले कर्मों की वजह से या कोई भी और कारण की वजह से हमको भौतिक अवस्था प्राप्त होता है, लेकिन जबरदस्ती हम शराब खाने से कैसे अपने नहीं करेंगे, बट वही भौतिक अवस्था को प्राप्त होता है। जो प्राप्त है उसी के अनुसार spiritual devotion sir, because my devotion sir is not dependent on my material position. मेरी भौतिक अवस्था के ऊपर मेरा भक्ति निर्भर नहीं करता है। That is the point. आपको बात सही है, सनातन गोस्वामी का उदाहरण है, वो अपना शरीर को कुष्ठ रोग आ गया करके रथ के नीचे जाके वो समर्पित करना चाहता, श्री चैतन्य महाप्रभु उनको आके बोला कि क्यों, बोला कि मेरा शरीर बहुत दुर्बल हो गया आपकी भजन के लिए काम का नहीं है, बोला कि ये तो तुम्हारा शरीर थोड़ी ना है मेरा शरीर है, तुमने मुझे समर्पित किया है तो ये शरीर किसका हुआ, ये मेरा श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का तो ये बताते, तो इसलिए आपको आपका कोई हक नहीं है इस शरीर के ऊपर क्योंकि आपने मुझे समर्पित कर दिया है। इसने भगवान को अगर समर्पित किया है शरीर को, हमको अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए शरीर को, लेकिन भगवान की योजना की वजह से हमको ऐसे ही दुर्बल शरीर मिला है कोई लंगड़ा, नहीं नहीं मैं ये भगवान ने ऐसा कर दिया क्या करूँ मैं कैसे भजन करूंगा मैं, नहीं नो कंप्लेंट्स, वॉट एवर इज अवेलेबल बाय कृष्णास मर्सी तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो पुंजानमेवा कृतं विपाकम् नमस्ते whatever position Krishna has given to you, that is the best position. जो भगवान ने आपको जो स्थिति में दिया है, जो भौतिक अवस्था में दिया है, ये समझ लीजिए भगवान ने दिया है। भगवान ने दिया है तो भगवान को मालूम है आपके लिए क्या सही पोजिशन है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा पोजिशन दिया जाए अहंकार हो सकता है इसके आपको निम्न पोजिशन दिया, आप बड़ा पोजीशन इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप ज्यादा जिम्मेदार क्वालिफाइड, तो इसलिए हमको इधर हम नो कंप्लेंट्स, दैट्स ऑल इस बात तो क्या ठीक है।
जिस हम देखेंगे कि भक्ति में स्थान और समय का बहुत 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 प्रभाव रहता है, खास करके हम लोग चतुर्मास लेंगे, चतुर्मास भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है, सुबह के समय जप करना भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। स्थान भी जैसे कार्तिक महीने में वृंदावन जाने से भक्ति में बहुत प्रगति है, इसका प्रभाव होता है, तो स्थान समय का बहुत प्रभाव रहता है। तो
देखा जाए भागवतम का शुरुआत में प्रभुपाद इस बात को लिखते हैं, भागवतम का शुरुआत इसी से होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस प्रकार नैमिषारण्य के मुनिगण सुबह के समय, वो प्रातः सुबह के समय किए, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई विरोधास्पद चीज थोड़ी नहीं है, किसी को सुबह उठ के अच्छा तरह जप करता है वो सात्विक हो सकता है, अनुकूल चीजें हैं। ये शास्त्र को अच्छी तरह समझने के लिए, मान करने के लिए सुबह बहुत अच्छा टाइम है, रात को करने बैठेगा तो ये नहीं। तो ऐसा अवस्था हुआ, सपोज बाय योर कर्मा, ऐसा हुआ कि किसी का ऐसा, कोई गृहस्थ है आजकल बॉम्बे में रहता है, कोई व्यक्ति वो कोई कॉल सेंटर में काम करता है से फॉर एग्जाम्पल, तो उसका वही टाइम है उसका ड्यूटी, इसका मतलब क्या जब करना छोड़ देगा वो, तो हमको सुबह के टाइम में नौकरी करना होता है तो अभी करना छोड़ देगा नहीं, यू शुड डू इट। अगर किसी को मौका मिल रहा है तो उनका बहुत बड़ा सुकृति है, इसलिए मौका मिल रहा है। ये जो सुबह प्रोग्राम अटेंड करने का जो मौका कितने लोगों को मिल पाता है बताइए, हाउ मेनी पीपल गेट दिस। जिसको मिल रहा है सुबह वो जल्दी उठ के मंगल आरती करके पूरा सोलह माला जप करके तुरंत प्रसाद ग्रहण करने के, ये जो मौका है तो कितना करोड़ों लाखों जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलता है, सच ए ग्रेट फॉर्चून, वो भी आजकल की परिस्थिति में, मुंबई जैसा शहर की परिस्थिति में, इट्स वेरी ग्रेट फॉर्चून। मिल रहा है तो एक्सेप्टेड, अगर नहीं मिल रहा है ये बहाना नहीं है, दैट इज द पॉइंट हियर, नो बहाना, इसके वजह से हुआ उसको, नो एक्सक्यूजेस इन डिवोशन सर्विस। अगर आपका भक्ति अगर छूट रहा है उसका एक ही कारण है, कौन है, नहीं कारण, आई एम दोस पार्ट्स, नोबडी इज द पार्ट्स, मेरा बाजू वाला कारण नहीं है, मेरा प्रेसिडेंट कारण नहीं है, टेम्पोरल कमांडर कारण नहीं है, मेरा पत्नी कारण नहीं है, कोई और कारण नहीं, आप ही कारण, यू आर द ओनली कॉज, दैट इज द पॉइंट। बिकॉज आप क्या सोचने लगे, ये शरीर के साथ संबंधित चीजें के साथ मेरा कुछ संबंध है, सीधा कुछ संबंध है, ऐसा नहीं कि ये रियलाइजेशन वो बहुत देर के बाद आएगा, रियलाइजेशन जो साक्षात्कार बहुत देर में आएगा, लेकिन मनन अभी से करना शुरू कर सकते हैं, और ये मनन करते 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 ये साक्षात्कार ऑटोमेटिकली आता है, ऐसा नहीं, मुश्किल बात नहीं सकती है, इस ट्रूथ दौर्भाग्य है, और क्या है जीवन दौर्भाग्य, इनको मौका है, पूरा मौका, मौका का पूरा फायदा ले, बुद्धिमान है, दुर्मतांधे वही है, दुर्मत है, दुर्मत है। हमारा सबसे पहला ये पहचानना कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि मेरे हाथ में हीरा है थोड़े ना खोजेगा, और वो आंधा है तो सोचेगा ये पत्थर है, तो फर्स्ट यू शुड नो द वैल्यू ऑफ डिवोशनल सर्विस, हमारा कितना सौभाग्य है वो जानना बहुत जरूरी है। ये भक्ति का महिमा के द्वारा हमको प्रैक्टिकली क्या सोचना चाहिए, भक्ति बहुत महान है, देखो भक्ति कितना महान है, आप सब भक्त बनो, वो तो अलग बात है पहचान के, लेकिन भक्ति इतना महान है तो मुझे प्राप्त हुआ है तो मुझे उतना सुरक्षित रखना है, दैट इज अ ग्लोरी, व्हाट इज यू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस, उससे प्रैक्टिकली हमको क्या सीखने को मिलता है व्यवहारिक तरीके से, भक्ति इतना महान है, सही बात है, लेकिन वो आपको मिला है तो उसको इस्तेमाल करना, उसको पोषण करना, यू शुड बी वेरी केयरफुल, अमूल्य वस्तु सब बात हो गया प्रभु, ठीक है, यंत्राशन भागवतम की
उच्चारण कीजिए, वो मारिए मत श्लोक को। दुर्भाग्य था, मैं माला आरती नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। और प्रश्न उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इस पर एक बहुत बढ़िया मुकुंद माला स्त्रोत है।
इदं शरीरं सत्संग जर्जरं पदा